آگے سبق دیکھیے بھائی. وَضَعُفَ حَمْلُ إِلَّا عَلَى غَيْرٍ فِي غَيْرِهِ اَيْ فِي غَيْرِ جَمْعٍ مَنْكُورٍ غَيْرِ مَحْسُورٍ لِصِحَّةِ الْاِسْتِسْنَاءِ حِينَ اِذٍ وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ جَوَازُ وُقُوعِ إِلَّا صِفَةً مَعَ صِحَّةِ الْاِسْتِسْنَاءِ قال يجوز في قولك ما أتاني أحد إلا زيد أن يكون إلا زيد صفة وعليه أكثر المتأخرين. گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ اور صاحب جامی یہ فرما رہے تھے کہ کبھی کبھار الا جو ہے اس کو بھی غیرن پر محمول کرتے ہوئے صفت بناتے ہیں, اور وہ اس مقام پر ہوگا جب الا جو ہے ایسی جمع کے بعد آئے جو نکیرہ ہو اور غیر محصور ہو. جمع سے مراد جمع لغوی ہے, یعنی جس میں تعدد ہو بھائی, جمع اصطلاحی مراد نہیں. تو ایک ایسی چیز آئے جس کے اندر تعدد ہو اور وہ نکیرہ ہو اور وہ غیر محصور ہو, تو پھر استثناء ممکن نہیں رہتا. نہ آپ اس کو مستثنا متصل کے لیے بنا سکتے ہیں اور نہ مستثنا منقطع کے لیے. تو جب استثنا متعذر ہوا تو پھر مجبوری کی وجہ سے الا کو صفت پر محمول کیا جاتا ہے بھائی. تو گزشتہ سبق کے اندر یہ آخری صفت غیر محصور کا ذکر آیا تھا. صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ محصور جو ہے وہ دو چیزیں ہیں بھائی. ایک تو جن سے مستغرق ہے, یعنی ایسی جنس جو اپنے افراد کا احاطہ کر لے, جیسے رجلن, رجل ایک جنس ہے, رجل ایک جنس ہے, اس نے اپنے افراد کا احاطہ نہیں کیا ہوا, لیکن اسی رجل کو آپ تحت نفی لے آئیں, ما جا انی رجلن, تو نکرہ تحت نفی آیا, تو اس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ کر لیا اور رجل کے ہر ہر فرد سے آنے کی نفی ہو گئی. معلوم ہے میرے پاس کوئی ایک بھی آدمی نہیں آیا. تو اب دیکھو رجل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جمع ہے, کیونکہ یہ جن سے مستغرق ہے جس نے اپنے تمام افراد کا احاطہ کیا ہوا ہے. یا اسی طرح اس رجل پر کل کا لفظ لے آئیں, کل رجلن, ہر آدمی, دیکھو اس نے بھی کیا کر لیا, اب اپنے افراد کا احاطہ کر لیا. تو لہذا محصور یا تو وہ جن سے مستغرق ہوگا یا پھر وہ اس جنس کے بعض افراد ہوں گے جن کی تعداد معلوم اور متعین ہوگی, یعنی ان کے ساتھ عدد ذکر ہوگا, جیسے عندی عشرات دراہم, میرے پاس 10 درہم ہیں. تو اب دیکھو عشرہ نے درہم کی ایک مخصوص مقدار, ایک مخصوص تعداد کا احاطہ کیا ہوا ہے, تو یہ بھی کس کی مثال ہے, محصور کی. تو جن سے مستغرق اور یہ معلوم العدد جو جنس ہے یہ محصور کی مثال, اور ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر محصور ہے. تو جمع ہو, منکور ہو اور غیر محصور ہو تو پھر استثناء متعذر ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ محصور ہے, یعنی جن سے مستغرق ہے, یا اس نے معلوم تعداد کا احاطہ کیا ہوا ہے, اس کو حصر کیا ہوا ہے, تو پھر استثناء متعذر نہیں رہتا. مثلا میں کہتا ہوں عندی عشرۃن الا درہمن, دیکھو اب تو عشرہ سے ایک درہم کا استثناء متعذر نہیں, تو یہ لہذا استثناء کے لیے ہی ہو جائے گا. یا میں کہتا ہوں کل رجلن الا زیدن جاءنی, اب کل رجلن سے ایک زید کا استثناء ہو گیا, تو جب جن سے مستغرق ہو یا جنس کے بعض افراد جو معلوم العدد ہوں وہ آ جائیں تو پھر استثناء متعذر نہیں رہتا, پھر اس الا کو استثناء پر ہی محمول کریں گے. اور پھر صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ہم نے غالباً کی قید لگائی تھی ضابطے کے اندر, کہ غالباً یعنی اکثر اوقات میں جب الا کس کے بعد آئے, جمع منکور غیر محصور کے بعد, تو پھر وہ صفت کے لیے ہوگا. کہتے ہیں یہ غالباً کی قید ہم نے اس لیے لگائی کیونکہ یہ ضابطہ کلی نہیں, بعض اوقات غیر محصور ہوتا ہے जमा है, मनकूर है और गैर महसूर है। और उस वक्त तो इन्होंने बताया कि इस्तेस्ना मुताअज़्ज़िर होता है, लिहाजा सिफत पर महमूल करेंगे, लेकिन बाद जगह गैर महसूर होने के बावजूद इस्तेस्ना मुताअज़्ज़िर नहीं होता, तो फिर उस सूरत में उसको इस्तेस्ना पर ही महमूल करेंगे, सिफत के लिए नहीं बनाएंगे। जैसे मसलन मैं कहता हूं जाअनी रिजालुन इल्ला वाहिदन, अब रिजाल जमा है और माना क्या है, कुछ आदमी, मेरे पास कुछ आदमी आए, इल्ला वाहिदन, अब देखो यहां जमा गैर महसूर है लेकिन इससे वाहिद का इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं, उन्हीं अफराज रिजाल में से एक फर्द का इस्तेसना कर दिया गया, तो यहां इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं अगरचे गैर महसूर है। या मैं यूं कहता हूं जानी रिजालुन इल्ला रजुलन, अब यहां पर भी इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं क्योंकि मां बाद में है रजुल, मां कबल में है रिजाल, मेरे पास कुछ आदमी आए, इल्ला रजुलन सिवाय एक आदमी के, तो ये रजुल भी उन्हीं रिजाल के अफराद में से है, तो आप आराम से उसका इस्तेसना कर सकते हैं। तो ये इस्तेसना के लिए हुआ, ये इल्ला सिफत के लिए नहीं। या जानी रिजालुन इल्ला हिमारन, मेरे पास कुछ आदमी आए सिवाय हिमार के यानी गधे के, अब ये भी आराम से आप इस्तेसना यहां मुस्तस्ना मुनकतिया बना लेंगे, तो इस्तेसना पर महमूल करना कोई मुताअज़्ज़िर नहीं। तो मालूम हुआ गैर महसूर हो तो हमेशा इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं होता लेकिन अक्सर मुताअज़्ज़िर होता है। और इसी तरह गैर महसूर की कैद लगाई, इससे मालूम हुआ कि जब महसूर होगा तो फिर इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं होगा। गैर महसूर हो तो फिर इस्तेसना मुताअज़्ज़िर होता है, इससे यह बात पता चल गई कि महसूर हो तो फिर इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि मालूमुल आदद है, महसूर है, फिर भी इस्तेसना मुताअज़्ज़िर है भाई वहां पर, हालांकि वहां पर तो महसूर में तो इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं होना चाहिए। मसलन मैं कहता हूं जाअनी मिअतु रजुलिन इल्ला ज़ैदुन, मेरे पास 100 आदमी आए सिवाय किसके, जैद के, अब देखो यहां इस महसूर है, मिअतु रजुलिन मालूमुल आदद है, तो यहां तो इस्तेसना मुताअज़्ज़िर नहीं होना चाहिए लेकिन यहां इस्तेसना मुताअज़्ज़िर है क्योंकि क्या माना हुआ, मेरे पास 100 आदमी आए किसके अलावा, जैद के अलावा, अब पता नहीं जैद इन 100 में दाखिल है या दाखिल नहीं। कोई मुतायन जमात होती ये वाले 100 आदमी, फिर तो तय हो सकता था जैद इनमें है या जैद नहीं, लेकिन जब मुतलकन का 100 आदमी, 100 तो कोई से भी 100 आदमी हो सकते हैं, तो अब पता नहीं जैद उनमें शामिल है या शामिल नहीं। तवज्जो है, तो लिहाजा इस सूरत में ना यहां मुस्तस्ना मुत्तसिल हम बना सकते हैं ना मुस्तस्ना मुनकते हैं, तो फिर इसको किस पर महमूल करेंगे, इसको सिफत पर ही महमूल करेंगे। जानी मिअतु रजुलिन इल्ला ज़ैदुन, तो ये इल्ला ज़ैदुन सिफत बन जाएगा मिअतु रजुल के लिए। और उसके बाद फिर वो आयत आई थी लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इस जमीन और आसमान में ऐसे आलिहा होते इल्लल्लाहु ऐ गैरुल्लाहि अल्लाह के अलावा लफसदता, तो इनका निजाम फासिद हो जाता। अब देखो यहां इल्ला से माकबल आलिहा आया और आलिहा जमा भी है, मनकूर यानी नकिरा भी है और गैर महसूर है, इसने पूरी जिंस का इहाता नहीं किया हुआ, तो लिहाजा यहां पर इल्ला को इस्तिस्ना पर महमूल नहीं कर सकते क्योंकि इस्तिस्ना की तो दो ही सूरतें हैं, या मुस्तस्ना मुत्तसिल होगा या मुस्तस्ना मुनकते। यहां पर माकबल में है कुछ आलिहा, मां बाद में अल्लाह ताला का जिक्र है, तो पता नहीं अब अल्लाह ताला इन कुछ आलिहा में शामिल हैं या शामिल नहीं, यह बात यकीनी नहीं। अगर शामिल होते तो मुस्तस्ना मुत्तसिल हम बना लेते, अगर शामिल ना होते तो हम मुस्तस्ना मुनकते बना लेते। तो यहां पर ना मुस्तस्ना मुत्तसिल की कोई सूरत है और ना मुस्तस्ना मुनकते की, तो लिहाजा अब यहां इल्ला को सिफत पर महमूल करना पड़ेगा। तो इल्लल्लाहु ऐ गैरुल्लाही भाई। और नीज साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि यहां इल्ला को गैरुन पर यानी सिफत पर महमूल करने की एक और वजह भी है कि अगर आप इल्ला को इस्तिस्ना के लिए बनाएंगे तो फिर तौहीद की, तौहीद के मुनाफी हो जाएगा, यह अल्लाह की वहदानियत के मुनाफी हो जाएगा। और आप इल्ला को गैर के माना में लेंगे, सिफत के लिए बनाएंगे, तो फिर इस सूरत में यह वहदा, इससे वहदानियत साबित होगी। किस तरह, देखो इल्ला को अगर हम सिफत के लिए बनाते तो माना क्या होता, लौ कान फीहिमा आलिहतुन, अगर इस जमीन और आसमान में कुछ ऐसे माबूद होते इल्लल्लाह जिनसे अल्लाह का इस्तिस्ना कर लिया गया हो, जिनसे ये इल्ला अगर हम इस्तेसना के लिए बनाएंगे तो ये तौहीद के मुनाफी हो जाएगा। भाई तवज्जो से सुनो, किस तरह तौहीद के मुनाफी है। इल्ला को अब हम बनाएंगे इस्तेसना के लिए। अगर इस जमीन और आसमान में कुछ ऐसे आलेहा होते जिनसे अल्लाह का इस्तेसना किया जाता तो फिर जमीन और आसमान का निजाम खराब हो जाता। मालूम हुआ इस जमीन और आसमान में ऐसे आलेहा नहीं है जिनसे अल्लाह का इस्तेसना किया गया हो। तो इससे तो उन आलेहा की नफी हुई जिनसे अल्लाह का इस्तेसना हो, ऐसे आलेहा नहीं है। तो इससे उन आलेहा की तो नफी न हुई जिनसे अल्लाह का इस्तेसना न किया गया हो। माना क्या हुआ, अगर जमीन और आसमान में ऐसे आलेहा हो जिनसे अल्लाह का इस्तेसना हो तो निजाम खराब हो जाएगा। मालूम हुआ ऐसे अगर कुछ आलेहा हो जिनसे अल्लाह का इस्तेसना न हो तो फिर जमीन और आसमान का निजाम खराब नहीं होगा। मालूम हुआ ऐसे आलेहा की तो नफी हो गई जिनसे अल्लाह का इस्तेसना हो, लेकिन उन आलेहा की नफी तो न हुई जिनसे अल्लाह का इस्तेसना न हो। भाई तो इहतमाल आ गया, इसका मतलब है हो सकता है ऐसे आलेहा हो जिनसे अल्लाह का इस्तेसना न हो, तो यह तो तौहीद के मुनाफी हुआ। लेकिन इल्ला को जब आप सिफत के लिए बनाएंगे और गैरुन पर महमूल करेंगे फिर यह तौहीद के मुनाफी नहीं, फिर इससे पूरी तौहीद साबित हो जाएगी। फिर कैसे माना होगा, देखो अगर इस जमीन और आसमान में ऐसे आलेहा होते इल्लल्लाहु ऐ गैरुल्लाह, जो अल्लाह के मुगायर हो, जो अल्लाह के मुगायर हो, तो जमीन और आसमान का निजाम खराब हो जाता। मालूम हुआ जमीन और आसमान में कोई ऐसे आलेहा नहीं जो अल्लाह से मुगायर हो। भाई क्योंकि अगर मुगायर होंगे तो तअद्दुद लाजिम आएगा, कई आलेहा हो जाएंगे। जब अल्लाह के मुगायर कोई आलेहा नहीं तो मालूम हुआ तअद्दुद आलेहा भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही की जात माबूद है, और यही तौहीद यहां साबित करना मकसूद है। बात समझ में आ गई। आगे सबक देखिए भाई आज का, कहते हैं वज़ाउफा हमलु इल्ला अला गैरिन फी गैरिही ऐ फी गैरि जमइन मनकूरिन गैरि महसूरिन लिसिहति लिस्तिस्नाइ हीना इज़िन। भाई गुज़श्ता सबक में इन्होंने आपको बतलाया कि इल्ला को कभी कभार गैरुन पर महमूल करते हैं और सिफत बनाते हैं। वो किस वक्त होगा, जब इल्ला किसके बाद आए, ऐसी जमा के बाद आए जो नकेरा हो और गैरे महसूर हो। आज आगे फरमा रहे हैं, पहले मतन देखो, वह ज़ाउफा फी गैरिही, और इसके अलावा में ज़ईफ है, इसके अलावा में भाई इसके अलावा, किसके अलावा, फी गैरिही, आपको बताएंगे कि इसके अलावा से मुराद है ये जो जमए मनकूर गैर महसूर है, जमए मनकूर गैर महसूर के अलावा में यह ज़ईफ है। क्या ज़ईफ है, इल्ला को गैरुन पर महमूल करना यानी सिफत बनाना। इस जमा मनकूर गैर महसूर के अलावा में इल्ला को गैरुन पर महमूल करते हुए सिफत बनाना यह ज़ईफ है। तो यह माना है वज़ाउफा और ज़ईफ है, यानी इल्ला को गैरुन पर महमूल करना फी गैरिही इसके अलावा में, यानी जमा मनकूर गैर महसूर के अलावा में। भाई अब इसको शरा के साथ देखिए, कहते हैं वज़ाउफा हमलु इल्ला अला गैरिन, और ज़ईफ है इल्ला को महमूल करना गैरुन पर, फी गैरिही ऐ फी गैरि जमइन मनकूरिन गैरि महसूरिन। फी गैरिही की हा ज़मीर बतला दिया कि जमा को राजे है, जो पीछे जमाई थी जमा मनकूर गैर महसूर। तो कहते हैं ज़ईफ है इल्ला को महमूल करना गैरुन पर, फी गैरिही इसके अलावा में, ऐ फी गैरि जमइन मनकूरिन गैरि महसूरिन, जमा मनकूर गैर महसूर के अलावा में। भाई क्यों, इसके अलावा इल्ला को गैरों पर महमूल करना ज़ईफ क्यों है, कहते हैं ले सिहतिल इस्तिस्ना हीन इज़िन, क्योंकि उस वक्त फिर इस्तिस्ना सही हो जाता है, और जब इस्तिस्ना सही हो फिर तो इल्ला को सिफत पर महमूल करने की कोई हाजत नहीं, गैरों पर महमूल करने की कोई हाजत नहीं। वह मजहब सीबवे ही जवाजु वुकूई इल्ला सिफतन, और इमाम सीबवे का मजहब जो है जवाजु वुकूई इल्ला सिफतन, वो ये है कि इल्ला का सिफत वाक़े होना जायज है, मा सिहतिल इस्तिस्नाई, बावजूद इस्तिस्ना के सही होने के। इमाम सिफ़ा फरमाते हैं इल्ला का इस्तिस्ना के लिए वाक़े होना सही हो फिर भी आप इसको सिफत पर महमूल कर सकते हैं। साहिब काफिया ने तो क्या बतलाया कि इल्ला को सिफत के लिए कब बनाएंगे, जब इसका इस्तेसना के लिए होना मुताजिर हो जाए, जबकि इमाम सीबिया फरमाते नहीं, इल्ला इस्तेसना के लिए हो सके, इस्तेसना के लिए उसका होना सही हो, फिर भी आप उस इल्ला को इसको सिफत बना सकते हैं। व मजहब उसी बवै ही, और इमाम सीबवै का मजहब जो है जवाज वुकू इल्ला सिफतन, वो इल्ला का सिफत वाके होना जायज है उनके नजदीक, मासिहतिल इस्तिस्नाई, बावजूद इस्तिस्ना के सही होने के, यानी इस्तिस्ना मुताजिर न हो फिर भी आप इसको सिफत पर महमूल कर सकते हैं, जबकि साहिब काफिया तो क्या फरमाते थे कि इस्तिस्ना मुताजिर हो फिर इसको सिफत बनाएंगे। काला, वो इमाम सीबवे फरमाते हैं, यजूज उफी कौली का मा अतानी अहदुन इल्ला जैदुन, इमाम सीबवे फरमाते हैं कि आपका ये जो कौल है मा अतानी अहदुन इल्ला जैदुन, इसके अंदर ये इल्ला जैदुन को सिफत बनाना भी जायज है। कैसे? देखो भाई, सबसे पहले गौर करो, मा अतानी अहदुन, मेरे पास कोई एक भी नहीं आया इल्ला जैदुन सिवाय जैद के, तो कलाम मूजब है या गैर मूजब? कलाम गैर मूजब है और मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर है, तवज्जो है। और फिर इस सूरत में आपने पढ़ा है कि जब कलाम गैर मूजब हो और मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर हो तो फिर आगे जो मुस्तस्ना आ रहा है यानी जैद, उस पर नसब भी जायज और उसको बदल बनाना भी जायज है। तो इल्ला जैदुन जब हमने पढ़ा तो मालूम हुआ इसको अहदुन से बदल बनाया। क्या बनाया? बदल, और मुबदल मिन्हू का इराब एक होता है। तो मा अतानी अहदुन इल्ला जैदुन, मेरे पास कोई एक भी नहीं आया, हर एक से आने की नफी हो गई, फिर उसमें से जैद को निकालकर उसके लिए आने का इस बात कर दिया, तो ये तो मुस्तस्ना मुत्तसिल हो गया। तो साहिब काफिया के नजदीक ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है और ये जैदुन मरफू है बदल होने की वजह से, जबकि इमाम सीबे फरमाते हैं कि ये इल्ला जैदुन इसको आप सिफत भी बना सकते हैं। अहदुन के लिए सिफत बना दें और अहदुन मरफू है और इल्ला जैदुन उसकी सिफत, और सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर हो, इसीलिए जैदुन पर रफ आया। तो ये इल्ला जैदुन ये सिफत है किसके लिए? अहद के लिए। अहद पर रफा, तो सिफत पर भी क्या आएगा? रफ आएगा, लेकिन इल्ला तो हर्फ है, उस पर वो रफा नहीं जाहिर हो सकता, तो फिर वो आगे इल्ला के माबाद पर वो रफा जाहिर हो गया। तो मालूम हो यह रफा बदल होने की बिना पर भी हो सकता है और यह रफा सिफत होने की बिना पर भी हो सकता है। तो काल इमाम सीबे फरमाते हैं, यजूज फी कौली का मा आतानी अहदुन इल्ला जैदुन, आपके इस कौल के अंदर जायज है अन यकून इल्ला जैदुन सिफतन, कि ये इल्ला जैदुन सिफत हो, ये भी जायज है। वाले ही अक्सर उल मुताखिरीना, आगे साहिब जामी फरमा रहे हैं इसी पर अक्सर मुताखिरीन हैं, अक्सर मुताखिरीन उलमा इसी बात की तरफ गए हैं कि इल्ला इस्तिस्ना के लिए हो फिर भी आप उसको सिफत बना सकते हैं। तो कहते हैं वाले ही अक्सर उल मुताखिरीन, और इसी पर अक्सर मुताखिरीन है, तमस्सुकम बिकौली ही व कुल्लु अखिम मुफारिकुहु अखूहु लअम्रु अबी का इल्लल फरकदान। तमस्सुकम बिकौली ही, तमस्सुक कहते हैं किसी चीज को मजबूती से थामना, तमस्सुकम बिकौली ही शायर के इस कौल को थामते हुए, यानी इस कौल से इस्तिदलाल करते हुए। मुताखिरीन ने भी इमाम सीबवे के कौल को तरजीह दी है, उनका यही मजहब है, और उन्होंने शायर के इस कौल को अपनी दलील बनाया है। तमस्सुकम बिकौली ही, शायर के इस कौल से इस्तिदलाल करते हुए, अब यह शेर है आगे, वकुल्लु अखिन मुफारिकुहु अखूहु, यह पहला मिसरा, लअम्रु अबी का इल्लल फरकदान, कुल्लु अखिन, कुल्लु मुजाफ, अखिन मुजाफोन इले, और आगे आ रहा है इल्लल फरकदान। याद रखिए ये फरमाते हैं कि ये सिफत है कुल्लु अखिन के लिए, किसके लिए? कुल्लु अखिन, तो कुल्लु मुजाफ अखिन मुजाफोन इले, तो ये कुल्लु अखिन की सिफत है और वो मरफू है, मुजाफ का एतबार है ना किसका, और सिफत पर वही अराब आता है जो मौसूफ पर आता है, इसीलिए है इल्लल फरकदान। इल्लल, हालांकि इल्लल फरकदान तस्निया है, तवज्जो है, अगर ये मुस्तस्ना होता तो मुस्तस्ना तो मंसूब होता, कलाम मूजब है, तवज्जो है, कोई हरफे नफी या इस्तेफाम है यहां पर नहीं, तो कलाम मूजब है और कलाम मूजब के अंदर मुस्तस्ना आए तो वो मंसूब होता है, तो इल्लल फरकदैन होना चाहिए था, लेकिन शेर में क्या है? इल्लल फरकदान, अरब का एक फसीह और बलीग शायर इल्लल फरकदान लेकर आया अपने शेर के अंदर। भाई याद रखो, फरकद, फरकद मुफरद है और फरकादान उसकी तस्निया है। फरकत कहते हैं कुतबी तारा, कुतबी तारा, ये कुतबी तारा ये शुमाल की तरफ, भाई कुतब शुमाली की तरफ एक सितारा है, ये अपनी जगह नहीं बदलता। इसके जरिए लोग जो है सिमत का पता चलाते हैं। तो कदीम जमाने में लोग और काफिले वगैरह सफर करते थे, ये जो सितारे हैं अगर आप गौर करें, ये जैसे सूरज मशिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है, चांद भी मशिक से निकलता है और मगरिब में डूब जाता है, इसी तरह ये जितने सितारे हैं ये सारी रात के अंदर सफर करते हैं, मशरिक से तुलू होते हैं और किस तरफ चले जाते हैं, मगरिब की तरफ चले जाते हैं। लिहाजा इनके जरिए सिमत का पता नहीं चल सकता भाई, क्योंकि ये अपनी जगह बदल रहे हैं भाई। एक घंटे पहले कहीं और थे और घंटे बाद ये दूसरी जगह पर होंगे, कुछ न कुछ मगरिब की तरफ चले गए। तो आम सितारों के जरिए सिमत का पता नहीं चल सकता था। हां, ये एक कुतबी तारा है, ये शुमाल की तरफ रहता है और ये अपनी जगह नहीं बदलता। तो लिहाजा इसके जरिए कदीम जमाने में लोग रात के वक्त सिमत का पता चलाते थे कि किस जानिब हमें सफर करना है भाई, रास्ते का इसके जरिए अंदाजा लगाते थे। तो इस कुतबी तारे को फरकद कहते हैं, फरकद, और इसके करीब एक और सितारा है, तो इस एतबार से इनको फरकदान कह दिया। असल तो फरकद वो कुतबे शुमाली वाला सितारा है, लेकिन दूसरा उसके करीब ही है सितारा, तो उसको भी क्या कह दिया, फरकद। तो दो फरकद हो गए, तो तस्निया क्या बन गया, फरकदानी। अब ये दो सितारे जो हैं ये इकट्ठे रहते हैं, जाहिर सी बात है कुतबी तारा अपनी जगह नहीं बदलता, और इसके साथ एक और सितारा है वो भी इसके करीब ही रहता है। तो शायर कहता है, देखिए तर्जमा शेर का सुनिए, कुल्लु अखीन, हर ऐसा भाई इल्लल फरकदानी, ऐ गैरुल फरकदानी, जो फरकदान के अलावा हो, हर ऐसा भाई जो फरकदान के अलावा हो, मुफारिकुहु अखूहु, वो अपने भाई से जुदा होने वाला है, वो अपने भाई से जुदा हो जाता है। तवज्जो है, यानी दुनिया में कोई भी दो भाई हो, दो अफराद मिलकर रहना चाहें, वो इकट्ठे नहीं रह सकते, बिल आखिर उनको एक दूसरे से जुदा होना पड़ता है। हत्ता कि और कुछ भी नहीं जुदाई करने वाली चीज हो, तो फिर कम से कम मौत आकर उन दोनों में क्या कर देती है, जुदाई डाल देती है। लेकिन ये जो दो फरकत, दो सितारे हैं फरकत, ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, ये हमेशा से इकट्ठे हैं और हमेशा इकट्ठे रहेंगे जब तक दुनिया है। तर्जमा समझ में आ रहा है, तो कुल्लु अखीन ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर मौसूफ, इल्लल फरकदान ऐ गैरुल फरकदान, ये है उसकी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ये बन गए मुबतदा, और मुफारिकुहु अखूहु ये है इनकी खबर। और इसकी भी तरकीब समझ लो, मुफारिक ये इसमें फाइल है, और आपको मैंने बताया था कि जैसे फेल के लिए फाइल या नाई फाइल चाहिए, इसी तरह सिफत के सिगों के लिए भी फाइल या नाई फाइल चाहिए। फेले मारूफ के लिए फाइल चाहिए और फेले मजहूल के लिए नायबुल फाइल चाहिए, तो मुफारिक इसमें फाइल है, तो इसके लिए भी फाइल चाहिए। तवज्जो है, और सिफत के सीगे फेल जैसा अमल करते हैं, फेल जैसे फाइल को रफा देता है और मफूल को नसब, इसी तरह सिफत के सीगे भी अपने फाइल को रफा देंगे और मफूल को नसब। तो मुफारिक इसमें फाइल है, और ये जो हाज अमीर इसके साथ जुड़ी हुई है ये मफूल भी ही है जी। ये मफूल भी ही है, और इसकी तरफ इसकी इजाफत हो रही है। मैंने बताया था जिस इसम के साथ भी जमीर मुत्तसिल आ जाए वो आपस में क्या बनते हैं, मुजाफ मुजाफिले। तो मुफारिक मुजाफ हो रहा है किसकी तरफ, हाज अमीर की तरफ, जो इसका मफूल है। तो सिफत का सीगा मुजाफ हुआ अपने मामूल की तरफ, तो ये कौन सी इजाफत है, इजाफत लफ्जी है भाई। और अखूहु ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये फाइल बन गया मुफारिक के लिए जी। जैसे फेल के लिए फाइल जमीर भी आ सकती है और इसमें जाहिर भी आ सकता है, तो यहां पर यह अखूहु मुजाफ मुजाफिले मिलकर यह फाइल है किसके लिए, मुफारिक के लिए। तो इसमें मुफारिक इसमें फाइल, अपने फाइल और मुजाफिले से मिलकर शिबे जुमला होकर यह खबर, यह खबर किसके लिए, कुल्लु अखिन इल्लल फरकदान के लिए, मौसूफ सिफत के लिए जी। फिर बयान कीजिए क्या तरकीब हुई, कुल्लु अखिन मुजाफ मुजाफिले मिलकर मौसूफ, इल्लल फरकदान ऐ गैरुल फरकदान, यह भी क्या है उसके लिए सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुबतदा, और मुफारिकुहु अखूहु ये उसके लिए खबर है, ये क्या है, ये सारी उसके लिए खबर, और इसकी तरकीब क्या हुई, मुफारिक इसमें फाइल, हा जमीर इसके लिए मफूल भी ही है लेकिन इस वक्त मजरूर है, मुजाफुन इले है, महलन मजरूर, और अखूह मुजाफ मुजाफिले मिलकर उसके लिए फाइल है, तो इसमें फाइल अपने फाइल और मुजाफिले से मिलकर शिबे जुमला होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तवज्जो है, तो कहते हैं वह कुल्लु अखिन, हर ऐसा भाई, देखो मौसूफ सिफ से पहले ऐसा का लफ्ज़ में ले आया, वह कुल्लु अखिन हर ऐसा भाई, इल्लल फरकदानी जो फरकदान के मुगायर हो, फरकदान के अलावा हो, मुफारिक हो अखू हो, जुदा होने वाला है उससे उसका भाई, फरकदान के अलावा हर भाई जो है उससे जुदा होने वाला है उसका भाई, यानी उसका भाई उससे जुदा हो जाता है, माना समझ में आ गया। और फिर ये आगे जो आया लामरु अबी का, ये लाम ताकीद के लिए है भाई, और ये अमरु अबी का ये कसम है भाई, अमर या उमर मीम साकिन है, आयन पर चाहे फतहा पढ़े चाहे जम्मा, या इसी तरह उमर भाई, उमर दोनों पर, आयन और मीम दोनों पर जम्मा पढ़े, ये इंसान का की मुद्दत बका है दुनिया के अंदर, जो जमाना उसने दुनिया में गुजारा है उसको उम्र कहते हैं। उर्दू में भी आप पूछते हैं एक दूसरे से आपकी कितनी उम्र है, यानी आपने इस दुनिया में कितना अरसा गुजारा है, तवज्जो है। तो उम्र किसे कहते हैं, इंसान की जो मुद्दत बका होती है, जिंदगी होती है दुनिया के अंदर, वो है उम्र भाई। और ये कसम है भाई, और कसम के मौका पर उम्र नहीं पढ़ेंगे, अमर ही पढ़ेंगे
जी,
अमर ही पढ़ेंगे। तो लाम किस लिए है, ताकीद के लिए, ला अमरु अबी का, अमर मुजाफ अबी, कबल के लिए मुजाफुन इले और मां बाद के लिए फिर मुजाफ और काफ जमीर मुजाफुन इले, तो ये सारे मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये बन गया मुबतदा। और कसमी इसकी खबर महजूफ है, कसमी मेरी कसम, कसम मुजाफ या जमीर मुजाफोन इले, यह है खबर। लामरु अबी का, आपके बाप की उम्र जो है, कसमी वो मेरी कसम है, यानी मैं आपके बाप के उम्र की कसम खाता हूं, मैं आपके बाप के उम्र की कसम खाता हूं। अरब कसमें बहुत इस्तेमाल करते थे, एक तो इससे कलाम के अंदर हुसन पैदा हो जाता, नीस कलाम के अंदर ताकीद आ जाती थी भाई। तो शायर क्या कहता है कि हर ऐसा भाई जो फरकदान से मुगायर हो वो अपने भाई से जुदा हो जाता है, मैं आपके बाप की उम्र की कसम उठाकर कहता हूं भाई। बात चल रही थी कि मुताखिरीन इस शायरी के इस कौल से इस्तेदलाल करते हुए कहते हैं, देखो कुल्लु अखिन ये है मौसूफ और इल्लल फरकदान उसकी सिफत है, इस्तिस्ना नहीं है, अगर इस्तिस्ना होता तो कैसे पढ़ते, इल्लल फरकदैन पढ़ते। तो अरब का एक फसीह बलीग शायर है और वो इल्लल फरकदान इसको सिफत बना रहा है, इल्ला को इस्तिस्ना के लिए नहीं बना रहा, हालांकि यहां तो इस्तिस्ना मुमकिन है। माकबल में आया कुल्लु अखिन महसूर है भाई, जिनसे मुस्तगरिक है, इसने अपने हर फर्द का क्या कर लिया, इहाता कर लिया, हर भाई इसके अंदर दाखिल हो गया। अब हर भाई जब इसमें दाखिल हो गया तो उसमें से फरकदान दो भाइयों का इस्तिस्ना भी मुमकिन हुआ, लेकिन इसके बावजूद शायर ने इल्लल फरकदान कहा, इल्लल फरकदैन नहीं कहा। मालूम हुआ उसने इल्ला को इस्तिस्ना के लिए नहीं बनाया बल्कि इसको सिफत के लिए बनाया, इसको माकबल की सिफत बनाया है। यह इस बात की दलील है कि इस्तिस्ना मुताअज़िर ना हो फिर भी आप इल्ला को सिफत के लिए बना सकते हैं, गैर उन पर महमूल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई जी। अब इस सारे को जरा तरतीब दे दें भाई, ये तो अशआर में अल्फाज आगे पीछे हैं। इल्लल फरकदान को कुल्लु अखिन के बाद ले आए, कुल्लु अखिन इल्लल फरकदानी, हर ऐसे भाई जो फरकदान के मुगायर हों, उनके अलावा हों, मुफारिकुहु अखूहु, हर ऐसा भाई, हर ऐसा भाई जो फरकदान के अलावा हो, मुफारिकुहु अखूहु, उससे जुदा हो जाएगा उसका भाई, फरकदान के अलावा हर भाई जो है उसका भाई उससे जुदा हो जाता है। लामरु अबी का ऐ लामरु अबी का कसमी, मैं आपके बाप की उम्र की कसम उठाता हूं भाई। तवज्जो है, तो यहां शायर ने क्या किया, इल्लल फरकदान को सिफत बनाया हालांकि इस्तिस्ना भी मुमकिन था। देखिए भाई आगे अब साहिब जामी भी सारी तफसील बयान करेंगे। कहते हैं फल फरकादान सिफत उन लिकुल्लु आखीन, फरकादान सिफत है कुल्लु आखीन के लिए, लस्तिस्ना उम्मीन हु उससे इस्तिस्ना नहीं है, वह इल्ला वजब अयू काला वरना तो लाजिम था कि यूं कहा जाता, अल फरकादैन बिन नस्बी, नसब के साथ अल फरकादैन कहा जाता, وحمل المصنف ذلك على الشذوذ, और इसको महमूल किया है मुसन्निफ ने शुजूज पर, के शाज है। इमाम सीबुवे तो फरमाते हैं कि इल्ला इस्तिस्ना के लिए मुमकिन हो फिर भी आप उसको सिफत बना सकते हैं, और नीज ये मुताखिरीन ने भी इमाम सीबुवे के कौल को तरजीह दी और इस शेर को बतौर दलील के पेश किया है, लेकिन मुसन्निफ साहिब काफिया जो हैं वो भी इस शेर पर मुत्तले थे, ऐसा नहीं कि वो इस शेर पर मुत्तलिया नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यह शाज है। शाज उसे कहते हैं जो कलील हो, किसे कहते हैं जो कलील है, इस्तेमाल के एतबार से सही है लेकिन कलील आया है भाई। तो जाब्ते जो है अक्सर इस्तेमालात पर मबनी होते हैं, ये जो नह के जाब्ते जितने बनाए हैं उलमा ने ये अरब के अक्सर इस्तेमालात को देखा है कि अक्सर अरब के फसीह बलीग शायर वगैरह वो किस तरह इन अरबी अल्फाज को इस्तेमाल करते थे, तो अक्सर इस्तेमालात पर जाब्ते बनाए जाते हैं, कलील इस्तेमालात पर जाब्ते नहीं बनाए जाते। तो वो फरमाते हैं ये शाज है भाई, तो कहते हैं वह हमल अल मुसन्निफ ज़ालिका अला शुज़ूज़ी, और इसको मुसन्निफ ने यानी साहिब काफिया ने इस शेर को महमूल किया है शुज़ूज़ पर यानी शाज होने पर, कि ये शाज है कलील है और इस पर ज़ाब्ते नहीं बनाए जा सकते। आम अरब शुआरा को हम देखते हैं वो इल्ला जब भी आए, जब वो इस्तिस्ना पर महमूल हो सके तो उसको इस्तिस्ना ही के लिए बनाते हैं, अगर किसी एक आदमी या दो ने अगर इसको इस्तिस्ना के मुमकिन होने के बावजूद सिफत पर महमूल कर लिया है तो उसको दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, वो शाज है भाई। तो मुसन्निफ ने इसको महमूल किया है शाज होने पर, वकाला और साहिब काफिया फरमाते हैं फिल बैती शुजूजानी आखरानी, कि इस शेर के अंदर दो और शाज भी हैं, यानी तीन शाज हैं इस शेर के अंदर, तीन चीजें, एक तो क्या कि इस्तिस्ना मुमकिन होने के बावजूद इल्ला को किस लिए बना दिया, सिफत के लिए, दूसरा शाज वो आपको बताएंगे कि कुल्लू को मौसूफ बना दिया, किसको, कुल्लु अखिन, कुल्लु अखिन, कुल्लु है मरफू और अखिन है मुजाफुन इले मजरूर, तो इल्लल फरकदान, इसके अंदर अल फरकदान क्या है, मरफू है, अल तस्निया है ना, तस्निया का रफा किसके साथ आता है, अलिफ के साथ, और नसब और जर या के साथ आता है, तो शेर के अंदर इल्लल फरकदान रफा के साथ आया है और इसको सिफत बना रहे हैं माकबल के लिए, और माकबल में कुल्लु अखिन, कुल्लु मुजाफ, अखिन मुजाफोन इले, इन दोनों में से मरफू कौन सा है, कुल्लु अखिन, कुल्लु मरफू है या अखिन मरफू है, कुल्लु जो मुजाफ है वो मरफू है और इल्लल फरकदान भी मरफू, मालूम हो इल्लल फरकदान को कुल्लु के लिए सिफत बनाया जा रहा है, हालांकि मशहूर यह है कि कुल्लू तो सिर्फ शुमूल का फायदा देता है, उसको मौसूफ नहीं बनाते बल्कि उसके मदखूल को मौसूफ बनाते हैं जी। उसके मदखूल को, तो कुल्लू अखिन, ये अखिन मजरूर है, इसकी सिफत लानी चाहिए थी और ये तो है मजरूर, तो आगे भी इल्लल फरकदैन मजरूर लाना चाहिए था, लेकिन शायर ने क्या जिक्र किया, इल्लल फरकदान मरफू जिक्र किया, मालूम हुआ ये अख की सिफत नहीं बना रहा बल्कि किसकी सिफत बना रहा है, कुल्लू की। बात समझ में आ गई, तो देखो आज आपको एक निहायत कीमती बात भी पता चल गई कि मौसूफ सिफत अगर आए तो कुल्लू जो है उसको मौसूफ नहीं बनाएंगे बल्कि जो उसका मदखूल होगा उसको मौसूफ बनाएंगे, जैसे कुरान में भी अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, कुल्ल शैइन हय्यिन, देखो कुल्ला मंसूब है, शैइन मजरूर है और हय्यिन, देखो ये सिफत जो लाई गई वो मजरूर लाई गई, कुल्ला शैइन की सिफत नहीं बनाई गई बल्कि शैइन की सिफत बनाई गई, क्योंकि मौसूफ सिफत का इराब एक जैसा होता है, शैइन मजरूर है तो आगे हय्यिन सिफत भी मजरूर लाई गई। तो कहते हैं वकाल फिल बैती शुजूजानी आखरानी, और साहिब काफिया फरमाते हैं कि इस शेर के अंदर दो और शाज भी हैं, अहदुहुमा उनमें से एक जो है वस्फु कुल्लिन दूनल मुजाफी इलैही, कुल्लुन को मौसूफ करना ना के मुजाफी इलैह कोई। इस शेर में कुल्लुन को मौसूफ बनाया गया है ना के मुजाफी इलैह को। वल मशहूरु वस्फुल मुजाफी इलैही, और मशहूर जो है वो मुजाफिले को मौसूफ बनाना है। इस हुवल मकसूद, क्योंकि मुजाफिले ही मकसूद होता है। वह कुल्लुन लिफादती शुमूल फकत, और कुल जो है वो तो सिर्फ शुमूल का फायदा देता है। कुल्लो रजुलिन, कुल्लो रजुलिन, इसके अंदर ये रजुल मकसूद है और कुल्लो तो सिर्फ शुमूल का फायदा दे रहा है। रजुल के तमाम अफराद का इसने इहाता कर लिया कि एक या दो फर्द नहीं मुराद इसके, बल्कि तमाम अफराद मुराद हैं। तो कुल किस चीज का फायदा देता है? शुमूल का। और मकसूद क्या हो इनमें से? मुजाफिले। तो सिफत भी किसकी लाई जाती है? मुजाफिले की भाई। और मैंने कुरान से भी जिक्र कर दिया, वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हय्यिन। आगे देखिए, कहते हैं वसानी ही मा, और दूसरा शाज जो है इन्होंने क्या बतलाया कि एक तो इल्ला को सिफत के लिए बनाया गया, एक ये भी शाज है, हालांकि इस्तिस्ना मुमकिन है तो लिहाजा इसको सिफत के लिए नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा भी दो और शाज हैं। एक शाज क्या कि कुल्लू को मौसूब बनाया गया, हालांकि जो कुल्लू का मुजाफिले होता है उसको मौसूब बनाया जाता है। और दूसरा शाज क्या है? कहते हैं वसानी हिमा, और दूसरा शाज जो है अल्फसलु बिल खबरी बैन सिफत वल मौसूफी, के फसल किया गया है खबर के जरिए बैन सिफत वल मौसूफी, मौसूफ सिफत के दरमियान। देखिए कुल्लु अखिन है मौसूफ, और इल्लल फरकदान ये है सिफत, और दरमियान में मुफारिकुहु अखुहु खबर लाई गई। तो मौसूफ सिफत के दरमियान खबर के जरिए फसल किया गया। किसमें? मौसूफ क्या? कुल्लु अखिन, और सिफत क्या? इल्लल फरकदान, और दरमियान में मुफारिकुहु अखुहु खबर लाई गई। तो ये कहते हैं वसानी ही मा, दूसरा शाज जो है अल्फसलु बिल खबरी बैन सिफती वल मौसूफी, वो फसल करना है खबर के जरिए बैन सिफती वल मौसूफी, मौसूफ सिफत के दरमियान। वह हुआ कलील, और ये कलील है यानी कदीम अशार के अंदर ऐसा बहुत कलील आया है कि मौसूफ सिफत के दरमियान खबर को लाया जाए, मौसूफ सिफत के दरमियान खबर को लाया जाए। तो यह भी शाज है। तो कितने शाज हो गए? तीन हो गए भाई। तवज्जो है, कौन से तीन शाज? पहला शाज क्या कि इल्ला इस्तिस्ना के लिए हो सकता है फिर भी इसको सिफत बनाया गया। दूसरा शाज कुल्लू की सिफत लाई गई, हालांकि सिफत मुजाफिले की लाई जाती है, कुल्लू सिर्फ शुमूल का फायदा देता है। और तीसरा शाज क्या कि मौसूफ सिफत के दरमियान खबर के जरिए फसल कर दिया गया, जुदाई कर दी गई, हालांकि यह भी अरब कलाम में ऐसा बहुत कलील आया है। तीन शाज हो गए भाई। अब आपके जहन में आएगा, तवज्जो है, बहस मुकम्मल हुई, आपके जहन में आएगा कुल्लु अखिन है मौसूफ, जरा वो शेर पे नजर रखें, और इल्लल फरकदान यह है उसकी सिफत, इनके दरमियान क्या क्या आया? मुफारिकुहु अखूहु खबर भी आई, और लअम्रु अबी का यह भी तो आया, इसको फसल के अंदर जिक्र नहीं किया, सिर्फ क्या कहा? फसल किया किसके जरिए? मुफारिकुहु अखूहु, सिर्फ खबर के जरिए फसल किया है। याद रखो लअम्रु अबी का यह है मुबतदा, और कसमी यह खबर महजूफ है, और यह वाजिबुल हजफ है। यह क्या है? आपने पढ़ा था कुछ जगह वो हैं जहां पर मुबतदा की खबर को हजफ करना वाजिब है, उनमें से एक मकाम यह है कि जब मुबतदा मुकसम भी ही हो, मुबतदा क्या हो? मुकसम भी ही हो, जिसकी कसम उठाई जा रही है, तो उसकी खबर को हजफ करना वाजिब है। लअम्रु अबी का कसमी, तो मेरी कसम क्या है? आपके बाप की उम्र है, यानी मैं उसकी कसम उठाता हूं, तो आपके बाप की उम्र, यह हुआ मुकसम भी ही, और यह मुबतदा है। तो ऐसा मुबतदा जो मुकसम भी ही हो उसकी खबर कसमी आती है, और उसको हजफ करना वाजिब है, कभी भी उसको लफ्जों में जिक्र नहीं करते। तो यह गोया पूरा एक जुमला दरमियान में आ रहा है, लअम्रु अबी का कसमी पूरा जुमला दरमियान में आया, लेकिन इसको फसल के अंदर क्यों नहीं शुमार किया? तो याद रखो यह जुमला मोतरेजा है, या इसको जुमला एतराजिया भी कहते हैं। याद रखो, तवज्जो से समझ लो, जुमला मोतरेजा या जुमला एतराजिया वो होता है जो दो मुतलाजिमैन चीजों के दरमियान आए, यानी दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के साथ लाजिम हैं। जैसे मौसूफ के साथ सिफत लाजिम है और सिफत के साथ मौसूफ लाजिम है, तो इन दोनों के बीच अगर कोई जुमला ले आए तो इसको क्या कहेंगे, जुमला मुतरेजा। तो जो भी दो मुतलाजिम चीजें हों, बाहम एक दूसरे के साथ लाजिम हों, उनके दरमियान कभी कभार एक जुमला ले आते हैं, उसको जुमला मुतरेजा कहते हैं। और उसके लाने का मकसद क्या होता है, कभी कभार उसके जरिए मकसद होता है वजाहत करना, एक चीज की वजाहत करना मकसूद होता है। कभी कभार उसके जरिए कलाम के अंदर ताकीद पैदा करना, जोर पैदा करना मकसूद होता है। जैसे यहां पर है, ये कसम उठाकर क्या कर रहा है, शायर अपनी बात में जोर पैदा कर रहा है। आप भी देखो, वैसे कसम नहीं उठाते, लेकिन कोई शख्स ना मान रहा हो तो आप अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए कसम उठाते हैं कि वल्लाह इसी तरह है भाई। तो यहां भी शायर क्या कर रहा है, कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए कसम वो लेकर आया। और नीस तहसीन कलाम के लिए कभी लेकर आते हैं। तो जुमला मुतरेजा किसे कहते हैं, जो दो मुतलाजिम चीजों के दरमियान आए, और कभी कभार वो वजाहत के लिए लाया जाता है, कभी कभार वो ताकीद के लिए लाया जाता है, कभी तहसीन कलाम वगैरह के लिए उसको लाया जाता है। भाई बात समझ में आ गई। तो ये दो मुतलाजिम चीजों के दरमियान आता है, जैसे मौसूफ सिफत है, इनके दरमियान कभी आ जाएगा, कभी मुब्तदा खबर, भाई मुब्तदा के लिए खबर जरूरी और खबर के लिए मुब्तदा जरूरी, कभी इनके दरमियान जुमला मुतरेजा आ जाएगा। कभी इसी तरह याद रखो, मौसूल सिला के दरमियान जुमला मुतरेजा आ जाएगा, मौसूल के लिए सिला चाहिए, सिला के लिए मौसूल चाहिए, तो दो मुतलाजिमैन के दरमियान जुमला मुतरेजा आ जाएगा। या इसी तरह कभी कभार शर्त और जजा के दरमियान जुमला मुतरेजा आ जाएगा, शर्त के लिए जजा चाहिए और जजा के लिए शर्त, ये दोनों मुतलाजिमैन हैं, दरमियान में क्या आ जाएगा, जुमला मुतरेजा आ जाएगा। और इसी तरह कभी फेल और फाइल के दरमियान आ जाएगा, फेल के लिए फाइल जरूर चाहिए, फाइल के लिए फेल जरूर चाहिए, तो दरमियान में क्या ले आते हैं, जुमला मुतरेजा ले आते हैं। इसी तरह कसम और जवाब कसम के दरमियान कभी कभार क्या ले आते हैं, जुमला मुतरेजा। तो बतलाना मैं ये चाहता हूं कि दो मुतलाजिमैन चीजों के दरमियान जो जुमला लाया जाए उसको जुमला मुतरेजा कहते हैं। आप भी इस्तेमाल करते रहते हैं, आप कहते हैं मसलन क्या, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, और आगे हुजूर अलैहि सलाम का कौल मुबारक आप नकल करते हैं। तो देखो قال رسول الله, अब आगे फौरन मकूला आना चाहिए, क्या फरमाया, आप दरमियान में ले आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जुमला मुतरेजा है। देखो इसमें आपने हुजूर पर दुरूद भेजा है। या जैसे आप कहते हैं किसी शख्स का जिक्र करते हैं और आगे रहिमहुल्लाह ले आते हैं, काला फुलानुन रहिमहुल्लाह, भाई काला फुलानुन के बाद आगे मकूला आना चाहिए था, लेकिन दरमियान में आप रहिमहुल्लाह ले आए, यह क्या है, ये जुमला मुतरेजा है। बात समझ में आ गई। तो बस इस किस्म का जुमला मुतरेजा होता है, कभी दुआ होगी, कभी कलाम के अंदर ताकीद पैदा करना, कभी कलाम की वजाहत करना, कभी इसी तरह कलाम को हसीन बनाना वगैरह, इसको जुमला मुतरेजा कहते हैं। और याद रखो, ये जो जुमला मुतरेजा होता है इसके लिए ला महल लहू मिनल एराब, इसके लिए कोई महल एराब नहीं होता, और इसको अगर कलाम से निकाल भी दिया जाए तो कलाम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके लिए भाई कभी कभार जुमले के लिए भी महल्ले एराब होता है, पूरा जुमला जब खबर बने, पूरा जुमला जब खबर बने तो खबर क्या होती है, मरफू, तो वो पूरा जुमला भी महल्लान मरफू होगा, क्योंकि जुमला मबनियात में से है। जैसे आप कहते हैं जैदुन जराबा, जैदुन जराबा, जैदुन मरफू लफ्जन मुब्तदा, जराबा फेल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल, जो किसको राजे मुब्तदा को, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया हुआ, और ये पूरा जुमला फेलिया खबर है किसके लिए, जैद के लिए। तो इस पूरे जराबा जुमले का एराब कोई आपसे पूछे इसका एराब बताओ तो आप क्या कहेंगे, महलन मरफू है, यह खबर है, खबर क्या होती है, मरफू है, और महलन क्यों है, क्योंकि मबनी है और जुमला मबनियात में से है भाई। लेकिन ये जो जुमला मुतरेजा होता है इसके लिए कोई महल एराब नहीं होता भाई, और इसको आप कलाम से हजफ भी कर दें तो कलाम में कोई खराबी और खलल नहीं आता भाई। तो ये जो ला अमरु अबी का आया, ये तो जुमला मुतरेजा है भाई, ये जुमला मुतरेजा है, और वो तो दरमियान में लाते रहते हैं, वो तो दरमियान में आता ही है दो मुतलाजिमैन के दरमियान, लिहाजा इसको फसल नहीं शुमार किया, इसको फसल सिर्फ किसको शुमार किया कि खबर को बीच में ले आए मौसूफ सिफत के, हालांकि अरब तो मौसूफ सिफत के दरमियान खबर को ले आए ऐसा निहायत ही कलील है। तो ये शाज है भाई, बात समझ में आ गई। इसलिए लामरु अबी का इसको फसल में जिक्र नहीं किया, सिर्फ खबर को जिक्र किया कि उसके जरिए फसल आ रहा है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, पहले सिर्फ मतन मतन देख लीजिए। व ए आराबु सिवन व सवा इन नस्बु अल ज़र्फ़ अल असह। सिवन भाई ये सिवा है, सिवा। वैसे तो बोलचाल में आम असातिजा सिवा बोलते हैं, लेकिन इबारत के एतबार से जब आप पढ़ेंगे तो सिवन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिवन। ये हुदन की तरह सिवन और सुवन, सीन के कसरा और जम्मा दोनों के साथ, आप जानते हैं कसरा और जम्मा दोनों के साथ ये इस्तेमाल होता है, तो ये हुदन की तरह है। किसकी तरह? हुदन। ये इसमें मकसूर है। इसमें मकसूर किसे कहते हैं? जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। तो यहां क्या आया? वह एराबु सिवन। असल में क्या था? एराबो सिवायन, एराबो सिवायन, या मुतहर्रिक माकबल फतहा। तो उसको किससे बदला? अलिफ से, और आखिर में तनवीन का नून भी साकिन मौजूद है, तो क्या बन गया? सिवान। या मुतहर्रिक माकबल फतहा किससे बदला? अलिफ से, तो आखिर में तनवीन का नून साकिन भी मौजूद है, तो क्या बन गया? सिवान। तो इज्तिमाई साकिनैन आया, अलिफ भी साकिन नून भी साकिन, तो अव्वल मद्दा था उसको गिरा दिया, तो क्या बन गया? सिवन। तो अलिफ गोया तकदीरन अभी भी मौजूद है, तो ये इसमें मकसूर है। क्या है इसमें मकसूर? ये इसी तरह है जैसे मानन फतन मुस्तस्नन। मानन असल में क्या है? मसलन हालत रफी में पढ़ो मानयुन है, फिर या मुतहरिक माकबल फतहा उसको किससे बदला? अलिफ से, क्या बन गया? मानान, आखिर में तनवीन का नून भी है, तो फिर इज्तिमाई साकिनैन आला गैरी हद ही आया, अलिफ में और नून तनवीन में, अव्वल मद्दा था उसको गिरा दिया, तो क्या बन गया? मानन। तो ये अलिफ तकदीरन है, अभी भी अलिफ तकदीरन मौजूद है। किस वजह से गिरा है? इज्तिमाई साकिनैन की वजह से। अगर इज्तिमाई साकिनैन ना होता तो इसने नहीं गिरना था। लिहाजा अगर जरा इस पर अलिफ लाम ले आए, अलिफ लाम ले आए, अलिफ लाम की वजह से आखिर से तनवीन गिर गई, और वह अलिफ क्यों गिरा था? कि वो अलिफ भी साकिन था, आगे तनवीन का नून भी साकिन था, तो जब आप अलिफ लाम लाएंगे तो अलिफ लाम की वजह से तो तनवीन गिर गई, तो क्या बना? अल मानायु, फिर या मुतहरिक मा कबल फतहा उसको किससे बदला? अलिफ से, तो अल माना। अब देखो अलिफ नहीं गिरेगा, बात समझ में आ गई। तो बगैर अलिफ लाम के हो तो मानन फतन मुस्तस्नन, देखो तनवीन के साथ पढ़ेंगे, और अलिफ लाम हो यह इजाफत के साथ हो फिर यह अलिफ नहीं गिरेगा। अल माना अल फता अल मुस्तस्ना, तो इसी तरह यहां पर भी है। तो कहते हैं वे अराबु सिवन व सवा इन, यह आप सिवा भी पढ़ सकते हैं, यहां सिवा भी पढ़ सकते हैं, यानी अराब हिकाई पढ़ लें। यह अमूमन इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है। जानी सिवा जैदिन, जानी सिवा जैदिन, तो देखो यहां सिवा किसके साथ है? अलिफ के साथ है, क्योंकि इजाफत हो रही है ना, तनवीन तो है नहीं, तनवीन होती तो अलिफ गिर जाता, तो इजाफत की वजह से तनवीन गिर चुकी है, तो इसलिए अलिफ अभी भी मौजूद है। तो सिवा जैदिन, तो इस जुमले के अंदर देखो सिवा क्या है? अलिफ के साथ है, तो इसी को उठाकर आप यहां ले आए, एराब हिकाई पढ़ दिया। जैसे हिकायत में हो वैसा ही किसी जगह पढ़ दिया जाए, इसको क्या कहते हैं? एराब हिकाई। तो आप सिवा भी यहां पढ़ सकते हैं और सिवन या सुवन भी पढ़ सकते हैं। तो कहते हैं वह ए अराबु सिवन व सवा इन नस्बु अल ज़र्फी, के सिवा और सवा का जो ए अराब है, अन नस्बु वो नसब है, ये खबर है। ए अराबु सिवन व सवा इन ये है मुब्तदा, और अन नस्बु ये है उसकी खबर। तो सिवा और सवा का ए अराब जो है अन नस्बु व नसब है। अल ज़र्फी, बवजह ज़र्फ होने के, ज़र्फ आप जानते हैं मफूल फी बई, यानी जिसमें जमाने या जगह वाला माना पाया जाए उसको ज़र्फ कहते हैं, और ये मनसूब होता है भाई। तो कहते हैं सिवा और सवा का एराब जो है नसब है, अल ज़र्फी ज़र्फ होने की बिना पर, अल असही ऐ अल मज़हबिल असह, ज्यादा सही मजहब के मुताबिक, यानी इमाम सीबोवे के नजदीक, इमाम सीबवे के नजदीक के सिवा और सवा का एराब क्या है? नसब है। तवज्जो से सुनो भाई, याद रखो ये मुतलकन सिवा और सवा की बात नहीं हो रही, ये वो सिवा और सवा जो इस्तेसना के लिए आए, ये वो सिवा और सवा की बात हो रही है जो किस लिए आए, इस्तिस्ना के लिए आए, क्योंकि ये मुस्तस्ना की बहस चल रही है। तो ये अब इनका एराब क्या होगा? देखो इल्ला का तो कोई एराब नहीं था क्योंकि इल्ला तो हर्फ है, लेकिन गैर का एराब था। इन्होंने बताया था कि गैर अगर इस्तिस्ना के लिए आए तो उस पर वही एराब होगा जो मुस्तस्ना बा इल्ला का था, तवज्जो है। और अगर गैर सिफत बनता है तो सिफत पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर हो। तो ये सिवा और सवा ये भी इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये इस्तिस्ना के लिए आए तब इनका एराब क्या होगा? तो बताया कि उस वक्त ये मंसूब होंगे और जर्फ होने की वजह से मंसूब होंगे, क्योंकि ये मफूल फी हैं और मफूल फी मंसूब होता है। बात समझ में आ गई? अगर ये जर्फ ना हो, आप भी कुरान पढ़ते हैं, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, तो सवाउन, देखो ये मरफू है या नहीं, ये मरफू है, ये खबर होने की वजह से मरफू है। ये दूसरी जगह कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, तो यहां पर भी देखो सवाउन आया, देखो रफा आया या नहीं, जबकि आगे बताएंगे इमाम सीबे फरमाते हैं ये लाजिमुन नसब हैं, ये लाजिमुन ज़र्फियत हैं, ये हमेशा क्या बनेंगे, ज़र्फ बनेंगे। तो सवाल कुरान में तो ये मरफू आ रहे हैं, ज़र्फ तो मंसूब होता है। तो मैंने बतला दिया कि ये कौन से सिवा और सवा की बात हो रही है, जो इस्तिस्ना के लिए आए उनकी बात हो रही है। अब देखिए सारे को शरा के साथ कहते हैं वह एराब सिवा व सवा इन नस्ब अल ज़र्फी, और सिवा और सवा का एराब जो है वो नस्ब है अल ज़र्फी, ज़र्फ होने की वजह से। आगे साहिब जामी फरमा रहे हैं ऐ बिना अन अला ज़र्फियति ही मा, बिना अन अला ज़र्फियति ही मा, याद रखो ये जो आया ना अल ज़र्फ, साहिबे जामी बतलाना ये चाहते हैं कि ये आला तालील के लिए आया है। किस लिए आया है? तालील यानी इल्लत बयान करने के लिए आया है। जैसे भाई लाम आता है इल्लत बयान करने के लिए, इसी तरह कभी कभार आला भी ले आते हैं इल्लत बयान करने के लिए। कहते हैं देखो अब जरा लफ्जों पे जरा गौर करना, फिर मतन देखो, सिवा और सवा का जो एराब है अन नस्ब वो नसब है। भाई किस वजह से नसब है? कहते हैं अल ज़र्फी बवजह ज़र्फ होने के। देखो इल्लत बयान हो गई या नहीं, बवजह ज़र्फ होने के। आगे साहिबे जामी फरमा रहे हैं, खुद तशरी कर रहे हैं ऐ बिना अन अला ज़र्फियति ही मा, यानी इनके ज़र्फ होने की बिना पर। तो कहते हैं ऐ बिना अन अला ज़र्फियति ही मा, बिना पर इनके ज़र्फ होने के, इस वजह से इन पर नसब आता है। ले अन्न का इदा कुलता, इसलिए क्योंकि जब आप ये कहें जा अनिल क़ौमु सिवा औ सवा अज़ैदिन, जानिल कौम वो लोग मेरे पास आए सिवा और सवा अज़ैदिन इलावा जैद के, फकअन्नका कुलता, तो गोया कि आपने यूं कहा है मकान अज़ैदिन, सिवा और सवा को जरा हटाओ और इसकी जगह मकान ले आओ, जानिल कौम मकान अज़ैदिन वो लोग मेरे पास आए जैद की जगह पर, मालूम हुआ जैद नहीं आया। तो ये मकान के माना में है, बात समझ में आ गई। और मकान तो क्या है, ज़र्फ है, तो ये भी ज़र्फ होने की बिना पर मंसूब है। तो कहते हैं लि अन्नका इदा कुलता जा अनिल कौमु सिवा व सवा अज़ैदिन, जब आप ये कहें तो फका अन्नका कुलता, तो गोया कि आपने यूं कहा है मकान अज़ैदिन अल मजहबिल असह, ये जो सिवा और सवा जो है इस्तिस्ना के वक्त इन पर नसब आएगा ज़र्फ होने की वजह से, अल मजहबिल असह उस मजहब के मुताबिक जो ज्यादा सही है। तवज्जो है, ये इमाम सीबवे का और बसरा वालों का मजहब है, जबकि कूफा वाले कहते हैं नहीं कि जो सिवा और सवा हैं ये हमेशा ज़र्फ इनका वाक़ होना जरूरी नहीं, जबकि इसलिए आए इस्तिस्ना के लिए, बात इस्तिस्ना की चल रही है। जब ये सिवा और सवा इस्तिस्ना के लिए आए तो फिर इनका ज़र्फ होना जरूरी नहीं, बल्कि इन पर रफा भी आ सकता है, नसब भी और जर भी, मौके के मुताबिक। जैसे गैरून इस्तिस्ना के लिए जब आए तो उस पर रफा भी आ सकता है, नसब भी और जर भी आ सकता है, मौके महल के मुताबिक। तो यहां इनमें भी इसी तरह होगा, बात समझ में आ गई। तो साहिबे काफिया ने क्या फरमाया, अलल असही ऐ अलल मजहबिल असही, ज्यादा सही मजहब के मुताबिक ये मंसूब होंगे। किस वजह से? ज़र्फ होने की वजह से। किसकी वजह से? ज़र्फ होने की वजह से। मालूम हुआ कूफा वालों का मजहब भी सही है, लेकिन ये वाला मजहब जो इमाम सीबवे का है वो ज्यादा सही है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं अलल मजहब इल असही, ज्यादा सही मजहब पर, वह हुआ मजहब सीबवे ही, और वह इमाम सीबवे का मजहब है, यानी बसरा वालों का मजहब है। याद रखिए इमाम सीबवे को जिक्र किया, इमाम सीबवे की बात पहाड़ की तरह मजबूत समझी जाती है नह में, इसलिए उनको बतौर खास जिक्र फरमाया। और अजीब बात यह, मैंने पहले भी जिक्र किया था, इमाम सीबवे का इंतकाल 32 साल की उम्र में हुआ था, बिल्कुल यानी जवानी के अंदर उनका इंतकाल हो गया, और इनकी बात पहाड़ की तरह समझी जाती है नहव के अंदर भाई। तो अगर जवानी में उनके उलूम का यह हाल था तो आगे चलकर क्या हाल होता, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए भाई। तो कहते हैं वह हुआ मजहब सीबवे ही, और यह मजहब है इमाम सीबवे का। फहुमा इंदहू लाजिमा जरफियत, फहुमा तो ये दोनों जो हैं यानी सिवा और सवा, इंदहू ये इमाम सीबवे के नजदीक लाजिमा जरफियत, ये लाजिमु जरफियत है, यानी इनसे जरफियत जुदा नहीं होती। जब भी इस्तिस्ना के लिए आएंगे ये क्या बनेंगे, जर्फ बनेंगे, और जर्फ क्या होता है, मनसूब, तो इनका एराब नसब होगा। तो कहते हैं फहुमा इंदहू लाजिमा जरफियत, इबारत पे जरा गौर करें, फहुमा ये दोनों यानी सिवा और सवा, इंदहू इमाम सिवै के नजदीक लाजिमा, देखो लाजिमा असल में था लाजिमानी, तस्निया है ना दोनों, लाजिमानी, और ये मुजाफ हुआ अजरफियत की तरफ, तो नून इजाफत की वजह से गिर गया, नून गिर गया, क्या बन गया लाजिमा जरफियती। फिर अलिफ और ज़ा दोनों साकिन इज्तिमाई साकिनैन आया तो अलिफ भी गिर गया, तो कैसे पढ़ेंगे लाजिमा जरफियती। तो ये तस्निया है, याद रखना ये दोनों लाजिमु जरफियत हैं। तो कहते हैं फहुमा इंदहू लाजिमा जरफियती, तो ये दोनों जो है यानी सिवा और सवा इमाम सिवै के नजदीक लाजिमु जरफियत है, यानी जरफियत इनसे जुदा नहीं होती। लेकिन ये इस्तिस्ना की बात हो रही है, इस्तिस्ना की हालत में, वह इंद अल कूफीन और इमाम और कूफा वालों के नजदीक यजूज़ खुरूजुहुमा अनी जरफियती, जायज है इनका निकलना जरफियत से, जरफियत से इनका निकलना जायज है। वह तसर्रुफ फीहिमा, और इनमें तसर्रुफ का होना रफ़ऊ व नस्बऊ व जर्रन, रफा नसब और जर के एतबार से। कूफा वाले कहते हैं कि ये जो सिवा और सवा ये लाजिमु जरफियत नहीं है, बल्कि ये गैरुन की तरह जब इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल हो रहे हों तो ये जरफियत से निकलकर इन पर रफा नसब और जर भी आ सकता है मौके महल के मुताबिक। तो कहते हैं यजूज़ खुरूजुहुमा अनी जरफियति व तसर्रुफु फीहिमा रफ़ऊ व नस्बऊ व जर्रन, ये तसर्रुफ का आतफ है खुरूज पर, जायज है इनका जरफियत से निकलना, और जायज है तसर्रुफ फीहिमा इनके अंदर तसर्रुफ रफ़ऊ व नस्बऊ व जर्रन, रफा नसब और जर के एतबार से। का गैरिन, किसकी तरह, गैरिन की तरह, मुतमस्किन अभी कौल शायरी, वो इस्तदलाल करते हैं शायर के इस कौल से, वलम यबक सिवल उदवानी दिन ना हम कमा दानू, शेर पर नजर है, वलम यबक सिवल उदवानी, यह उदवानी ये नून जो है ना ये दूसरे मिसरे में चला गया है, पहला मिसरा सिर्फ सिवल उदवा, नून क्या है दूसरे मिसरे में है। याद रखो अरबी जुबान में इस तरह अक्सर होता है कि लफ्ज आधा एक मिसरे में होता है और आधा दूसरे मिसरे में, या कोई एक आधा हर्फ दूसरे मिसरे में। तो देखिए वलम यबका और बाकी नहीं रहा सिवल उदवानी, उदवान कहते हैं दुश्मनी को भाई, अदावत को, और बाकी नहीं रही सिवल उदवानी, दुश्मनी के अलावा, दुश्मनी के अलावा और कोई चीज बाकी ना रही। दिन ना हम, ये दाना या दीनू से है, दाना या दीनू का माना है किसी को बदला देना, कोई कोई शख्स कुछ अमल करे तो उसके अमल का बदला देना, इसको क्या कहते हैं दाना या दीनू। इसी से क्यामत के दिन को यौमुद्दीन कहते हैं, यौमुद्दीन ये इसी दाना या दीनू से है, दाना या दीनू का क्या माना बदला देना, यौमुद्दीन यानी बदले का दिन है, यानी इंसान ने जो कुछ किया होगा उसका बदला उसको दिया जाएगा भाई। और नीज अरबी में कहते हैं कमा तदीनू तु दानू, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया जाएगा, कमा तदीनू तु दानू। अच्छा तो कहते हैं वल्लम यबका सिवल उदवानी, कोई चीज बाकी नहीं रही इलावा अदावत और दुश्मनी के, दिन ना हम का मा दानो, दिन ना हम दाना या दीनों से है, असल में क्या था दाना या दीनु जरा गर्दान सुनाएं भाई, दाना दाना माजी है जी, दाना जी,
दाना दाना दानु दान दानता दिनना दिनता दिन तुमा दिन तुम दिनते दिन तुमा दिन तुमना दिन तो दिनना।
शाबाश, दाना दाना दानु दान दानता दिनना। दिनना असल में क्या था? दाना याई है ना, दाना असल में था दायाना, दायाना फिर तो जी। दिनना असल में क्या था? दिनना मैंने बताया था, अस्सी सही के अंदर चले जाया करो, वो सीगा निकाल लाओ। दाना या दीनू ये जराबा से है, तो वहां से सीगा ले आओ, क्या है? जारा बना, इस वजन पे बना लो इसको, दायान्ना जारा बना दायान्ना। फिर क्या किया? नून का नून में इदगाम किया, और दायान्ना या मुतहरिक माकबल फतहा, या को किससे बदला? अलिफ से, क्या बन गया? दानना। फिर इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद्दिही है या अला हद्दिही है? इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही किसे कहते हैं? अव्वल साकिन मद्दा हो, सानी मुदगम हो। यहां पर भी क्या है? दानना, अव्वल मद्दा है, सानी मुदगम है, लेकिन ये इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद्दिही है, क्योंकि ये दो कलीमों में आया है, क्योंकि आखिर में जो जमीर है वो तो अलग कलीमा है, वो अलग कलीमा है, तो एक कलीमे के अंदर होना चाहिए था। तो इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद्दिही आया, अव्वल मद्दा था अलिफ, उसको गिरा दिया, क्या बन गया? दन्ना, दन्ना। और फिर ये अलिफ असल में क्या था? या थी, तो यहां से या गिरी है, तो लिहाजा दाल को कसरा दे दिया, ताकि दाल का कसरा हज़्फ़े या पर दलालत करता रहे कि यहां से या गिरी है, तो दिन ना हुआ। तवज्जो है, जैसे खाफा के अंदर था, खाफा खाफा खाफू खाफत खाफता खेफना, असल में क्या था? खावेफना खावेफना। फिर वह मुतहरिक माकबल फतहा, उसको किससे बदला? अलिफ से, क्या बन गया? खाफना। फिर अलिफ इज्तिमाई साकिनैन से गिर गया, क्या बन गया? खाफना। जब खफना हो गया तो गिरा तो वाव है, लिहाजा कसरा नहीं लाना चाहिए, लेकिन ये वाव पर कसरा था, ताकि पता चले ये बाबे समिया से है। किस से है? बाबे समिया से है, जो दरमियान में हर्फ गिरा है उसके ऊपर कसरा था, उस कसरा पर दलालत करने के लिए फिर खा को कसरा दे दिया, क्या बन गया? खेफना। तो दिन्ना में दाल को कसरा दिया या पर दलालत के लिए, और खेफना में खा को कसरा दिया आयन के कसरा पर दलालत करने के लिए, वो जो आयन हजफ हो गया है। बात समझ में आ गई? तो दिन ना हम जी, दिन ना, ये तो जमा मुतकलिम का सीगा है। फिर करो गर्दान, दाना दाना दानू दानत दानता दिन ना दिनता दिन तुमा दिन तुम दिनती दिन तुमा दिन तुन ना दिन तु दिन ना दिन ना, वो सीगा मुतकल जमा मुतकलिम का है। तो दिन ना हम, हमने उनको बदला दिया, कमा दानू, जैसे उन्होंने बदला दिया था, जैसे उन्होंने बदला दिया था। वलम यबका सिवल उद्वानी, और बाकी नहीं रही कोई चीज सिवाय दुश्मनी के। तो दिन ना हम, हमने उनको बदला दिया, कमा दानू, जैसे उन्होंने बदला दिया था। भाई ये कोई शायर है और कोई लोग होंगे, इन्होंने इनके कबीले वालों पर, लोगों पर कोई जुल्मो सितम किया, तो शायर कहता है कि हमने कोशिश की लेकिन उनका जुल्मो सितम बढ़ता ही रहा, और शर और फितने के अलावा कुछ बाकी ही नहीं रहा। तो आखिर मजबूर होकर जब हमने देख लिया कि दुश्मनी के अलावा कोई चीज बाकी नहीं बची, तो जब हमने देख लिया कि वलम यबका सिवल उद्वानी, दुश्मनी के अलावा और कोई चीज बाकी नहीं रही, वो मुसलसल जुल्म ही करते जा रहे हैं, तो फिर दिन ना हम कमा दानू, तो हमने भी उनको ऐसा ही बदला दिया जैसा उन्होंने हमें बदला दिया था, यानी जैसा उन्होंने हमारे साथ सुलूक किया था, यानी यूं कहो हमने भी उनको वैसे ही सजा दी जैसा बर्ताव इन्होंने हमारे साथ किया था। अब देखो मकाम इस्तिशहाद यह है, वलम यबका सिवल उद्वानी, ये सिवा ये फाइल है लम यबका के लिए जी। ये फाइल है किसके लिए? लम यबका के लिए। और देखो ये सिवल उद्वानी, दुश्मनी के अलावा और कुछ बाकी ना रहा, तो ये देखो इस्तिस्ना के लिए आ रहा है। ये सिवा किस लिए आया है? ये इस्तिस्ना के लिए आया है, और ये इस वक्त फाइल बन रहा है, लम यबका बाकी ना रहा। क्या बाकी ना रहा? सिवल उद्वानी, इलावा दुश्मनी के, तो ये फाइल बन रहा है लम यबका के लिए। और फाइल क्या होता है? मरफू, मालूम हुआ ये महलन मरफू है। इमाम सीबुवे तो क्या फरमाते थे, कि सिवा और सवा क्या हैं, इस्तिस्ना के लिए आए तो लाजिम ज़र्फियत हैं, लेकिन यह अरब का एक फसीह शायर है और इसके अंदर उसने सिवा को जिक्र किया और यह सिवा क्या बन रहा है, फाइल। मालूम हुआ यह ज़र्फियत से निकलकर मरफू मनसूब या मजरूर भी हो सकते हैं, जैसे कि गैरुन होता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल्लम यबका सिवल उदवानी, और दुश्मनी के अलावा और कोई चीज बाकी न रही, दिन ना हम का मा दानू, तो हमने भी उनको ऐसा ही बदला दिया जैसा वो हमें बदला देते थे या जैसा वो हमारे साथ बर्ताव किया करते थे। वज़ामल अखफशु, और इमाम अखफश जो है वो गुमान करते हैं कि अन्ना सवा अन इदा अखरजूहू अन ज़र्फियति अयज़न नसबूहू। भाई देखिए कूफा वाले क्या कहते हैं, सिवा और सवा का जरफियत से निकलना और मरफू मंसूब या मजरूर होना जायज है, इस्तिस्ना के लिए होने के बावजूद। आगे इमाम अखफश की बात जिक्र कर रहे हैं साहिब जामी, कि इमाम अखफश का यह गुमान है कि ये सिवा और सवा जब जरफियत से निकल जाएं फिर भी इन पर नसब ही पड़ेंगे, फिर भी इन पर नसब ही पड़ेंगे। वजह यह कि ये ज्यादातर मंसूब इस्तेमाल होते हैं, जब ये ज्यादातर मंसूब इस्तेमाल होते हैं तो अगर कोई ऐसी जगह आ जाए जहां ये मंसूब ना हो फिर भी नसब ही पड़ेंगे, उनके उन अक्सर अहवाल पर महमूल करते हुए। अक्सर ये मंसूब होते हैं, यहां पर ये मंसूब नहीं है लेकिन पढ़ेंगे फिर भी नसब ही। भाई तवज्जो है। कहते हैं वज़ामल अखफश, और इमाम अखफश ये गुमान करते हैं अन्ना सिवा अन के सिवा का लफ्ज जो है इदा अखरजूहु अन ज़र्फियति, कि जब इसको कूफा वाले ज़र्फियत से निकाल दें अयज़न नसबूहु, तो उस वक्त भी वो इसको नसब देते हैं। इमाम अखफश का ये गुमान है कि कूफा वाले जब सवा उनको किससे निकाल दें, ज़र्फियत से निकाल दें, फिर भी पढ़ते क्या है इस पर नसब ही पढ़ते हैं। भाई क्यों नसब क्यों पढ़ते हैं, कहते हैं इस्तिनकारन लिरफ़ही, इस्तिनकार ये मफ़ूल लहू है। मफ़ूल लहू किसे कहते हैं, वो मस्दर जो मकबल फेल की इल्लत बयान करे। इस्तिनकार का माना है नापसंद करना, इस्तिनकारन लिरफ़ही, इसके अंदर रफा को नापसंद करने की वजह से। इमाम अखफश का यह गुमान है कि कूफा वाले जब सवा उनको किससे निकाल दें, ज़र्फियत से निकाल भी दें, ज़र्फ था तब तो मंसूब था, लेकिन अगर ज़र्फियत से कूफा वाले इसको निकाल भी लेते हैं फिर भी इस पर क्या पढ़ते हैं, नसब ही पढ़ते हैं, इसके अंदर रफा को नापसंद करने की वजह से। तर्जमा समझ में आ गया। फिर देखिए वज़ामल अखफश, और इमाम अखफश का यह गुमान है, देखो ज़ामा के साथ जिक्र किया वज़ामल अखफश, और ज़ाम कहते हैं ख्याल और गुमान को, ख्याल और गुमान को। मुहशी हजरात ने वजह तो नहीं लिखी कि यह ज़ामा क्यों जिक्र किया साहिब जामी ने, लेकिन शायद साहिब जामी इमाम अखफश की राय के साथ मुत्तफिक नहीं है, इसीलिए उसको ज़ामा के साथ जिक्र किया कि इमाम अखफश का यह ख्याल है, यह गुमान है। मालूम हुआ यह कोई तहकीकी बात नहीं है, उनके पास कोई इसकी दलील मौजूद नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। वज़ामल अखफश, और इमाम अखफश ने यह गुमान किया है कि अन्ना सिवा अन के सिवा अन जो है इदा अखरजूहू, जब कूफा वाले इसको निकाल लें अनि ज़र्फियति ज़र्फियत से अयज़न नसबूहू, तो उस वक्त भी उसको नबो नसब ही देते हैं, उस पर नसब ही पढ़ते हैं। इस्तिनकारन लिरफ़ही, उसके रफा को नापसंद करने की वजह से। फ़यकूलूना, पस कूफा वाले यूं कहते हैं जा अनि सवा अका, जानी सवा आ का, देखो सवा आ हमजा पर फतहा पढ़ रहा हूं मैं, हालांकि ये फाइल बन रहा है जानी के लिए, होना चाहिए क्या जानी सवा ओ का, लेकिन कूफा वाले इस पर क्या पढ़ते हैं नसब पढ़ते हैं। इमाम अखफश फरमा रहे हैं फयकूलूना, तो कूफा वाले यूं कहते हैं जा अनी सवा अका, नसब ही पढ़ते हैं हालांकि ये फाइल है। नीस वफी दारी सवा अका, यहां भी सवा अका पर नसब पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर रफा पसंदीदा नहीं। हालांकि तरकीब देखो, फी दार ये जार मजरूर है, और मैंने बताया था कि जार मजरूर जब भी कलाम में आए वो खबर तो बनेंगे मुब्तदा नहीं बन सकते, तो ये खबर मुकद्दम है, और सवा उका ये मुजाफ मुजाफिले मिलकर ये یہ مبتدا مؤخر ہے, تو یہ مبتدا مؤخر ہے, اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو سوا او کا ہونا چاہیے, لیکن کیا پڑھتے ہیں اس پر کوفہ والے؟ نصب پڑھتے ہیں, کیونکہ اس میں وہ رفع کو پسند نہیں کرتے. دیکھو کہا وزعم الاخفش ان سوا ان, سوا ان کو ذکر کیا اور سوا الف مقصورہ کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر نہیں کیا. کس کو؟ دو لفظوں کا ذکر چل رہا ہے نا, لیکن یہاں امام اخفش کے قول ذکر کرتے وقت سوا کو تو ذکر کیا, سوا جو الف مقصورہ کے ساتھ ہے اس کو ذکر نہیں کیا. وجہ یہ کہ وہ تو اس میں مقصور ہے, اس پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہو سکتا بھائی, وہ تو اعراب ہمیشہ تقدیری رہے گا. جانی موسا, رئی تو موسا, مرر تو بھی موسا, وہاں تو اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے, تو اس سے تو پتہ نہیں چلے گا, اس پر لفظوں میں نہ نصب نظر آئے گا نہ رفع. لیکن سوا کے آخر میں تو الف ممدودہ ہے, آخر میں حمزہ ہے, اور حمزہ پر تو اعراب کا پتہ چلے گا, اس لیے بالخصوص اس کو ذکر کیا کہ اس پر وہ رفع کو پسند نہیں کرتے. اس سے لفظوں کے اندر ہی فرق کا پتہ چل رہا ہے. وَمِثْلُ هَذَا, اور اسی کے مثل ہے, آگے آ رہا ہے قوله تعالى, اللہ کا یہ قول بھی اسی کے مثل. مثل هذا یہ ہے مبتدا, اسی کے مثل ہے. کیا چیز اسی کے مثل ہے؟ قوله تعالى, اللہ کا یہ قول, لقد تقطع بينكم, بالنصب, نصب کے ساتھ. اسی کے مثل ہے, کس چیز میں اسی کے مثل ہے؟ درمیان میں بتایا فی استنکار الرفع, رفع کے ناپسندیدہ ہونے میں, فی ما غلب انتصابہ, اس چیز کے اندر, اس لفظ کے اندر جس کے اندر اس کا نصب غالب ہوتا ہے, علی ظرفیت ظرف ہونے کی وجہ سے. وہ لفظ, توجہ سے ادھر دیکھو بھائی, وہ لفظ جس کے اندر نصب غالب ہوتا ہے ظرف ہونے کی وجہ سے, یعنی وہ لفظ جو اکثر اکثر کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ ظرف استعمال ہوتا ہے, اور ظرف پر کیا آتا ہے؟ نصب. تو وہ لفظ جس کا اس غالب استعمال بطور ظرف کے ہوتا ہے, تو اس کے اندر نصب کے علاوہ اور اعراب پسندیدہ نہیں. تو اس چیز کے اندر یہ اللہ کا قول بھی اسی کے مثل ہے. تو اسی کے مثل ہے اللہ کا یہ قول بھی, لقد تقطع بینکم, یہ پہلے بھی صاحب جامی ذکر کر چکے ہیں, وہ جہاں مفعول معہو کا ذکر آیا تھا, مفعول معہو کے شروع میں ہی انہوں نے ذکر فرمایا تھا کہ یہ مفعول معہو میں جو معہو ہے نا, مضاف مضاف الیہ مل کر, یہ نائب الفاعل ہے مفعول کے لیے. المفعول معہو, المفعول, المفعول, یہ مفعول کون سا صیغہ ہے؟ اس میں مفعول, اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے؟ نائب الفاعل چاہیے. تو یہ معہو یا مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ نائب الفاعل. پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ نائب الفاعل تو مرفوع ہوتا ہے, اور معہو یہاں تو ہم عین پر زبر پڑھ رہے ہیں, عین پر. تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا کہ یہ لازم النصب ہے, یہ ہمیشہ نصب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, تو وہی اعراب اس پر برقرار رکھا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے, لقد تقطع بینکم, ترکیب سنو بھائی, تقطع فعل ہے, اور یہ بینکم یہ اس کے لیے فاعل ہے, یہ بینکم اس کے لیے فاعل, اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. لہذا یوں ہونا چاہیے, لقد تقطع بینکم, اور چنانچہ بعض قراتوں میں باقاعدہ اس پر رفع آیا ہے. تو جن قراتوں میں رفع آیا ہے ان پر تو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل پر آنا بھی کیا چاہیے؟ رفع. تو لقد تقطع بینکم آیا ہے, لیکن یہ قرات جس کے اندر بینکم آیا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ فاعل ہے, جب فاعل ہے تو پھر اس پر نصب کیسے آیا؟ تو جواب وہی جو گزر گیا کہ یہ اکثر بینا کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے, یعنی منصوب استعمال ہوتا ہے. تو جو اکثر استعمال ہوتا تھا جس صورت پر, وہی صورت یہاں برقرار رکھی گئی. یہ کیا ہے؟ لازم النصب تھا, تو اسی نصب کو برقرار رکھا گیا غیر نصب والی صورت میں بھی. توجہ ہے؟ تو یہاں لقد تقطع بینکم, تقطع فعل, اور بینکم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے فاعل ہے, اور یہ مرفوع ہے, لیکن اس پر وہی نصب پڑا گیا جو اس بینا پر اکثر اکثر جگہ آتا ہے. جی معنی اس کا سمجھ لیں بھائی, لقد تقطع بینکم, تقطع کا معنی ہے ٹوٹنا بھائی, ٹکڑے ہونا. تو لقد تقطع بینکم, اور یہ بینکم یہ کیا ہے؟ اس کے لیے فاعل ہے, اور بین کا معنی یہاں کریں گے اتصال اور جوڑ کے. لقد تقطع تحقیق ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بینکم تمہارا اتصال جو ہے بینک کا کیا معنی کیا اتصال تمہارا جو اتصال تمہارے درمیان جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے مشرکین جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے لیکن قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ بت وغیرہ جن کو وہ خدا کا شریک بناتے تھے وہ موجود نہیں ہوں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کدھر ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے لقد تقطع بینکم تحقیق تمہارے درمیان تعلق ٹوٹ چکا ہے تمہارے اور ان بتوں کے درمیان تعلق ختم ہو چکا ہے تعلق ٹوٹ چکا ہے لقد تقطع بینکم تحقیق ٹوٹ چکا ہے بینکم تمہارے درمیان جو اتصال تھا تمہارے اور تمہارے جھوٹے معبودوں کے درمیان جو اتصال جو جوڑ اور جو تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے بھائی بات سمجھ میں آ گئی جی یہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمِثْلُ هَذَا فِي اسْتِنْكَارِ الرَّفْعِ فِيمَا غَلَبَ انْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ بِالنَّصْبِ توجہ سے ترجمہ سنو بھائی اور میں نے بتایا وَمِثْلُ هَذَا یہ ہے مبتدا قَوْلُهُ تَعَالَى یہ ہے اس کی خبر اور اسی کے مثل ہے یعنی اسی سواءً جس کو کوفہ والوں نے کیا کہا کہ یہ ظرفیت سے نکل جائے تو بھی اس پر نصب پڑیں گے اسی کے مثل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی کس چیز میں اس کی مثل ہے درمیان میں ذکر کیا فستنکار الرفع رفع کے ناپسندیدہ ہونے میں جیسے سواءً ظرفیہ سے نکل جائے پھر بھی اس کے اندر رفع ناپسندیدہ ہے یہ اللہ کا قول بھی اسی طرح ہے یہاں بینکم یہ ظرفیہ سے نکل کر فاعل بن رہا ہے لیکن پھر بھی اس پر کیا پڑا گیا نصب پڑا گیا ہے تو یہ بھی اسی کے مثل ہے فستنکار الرفع رفع کے ناپسندیدہ ہونے میں فیما غلب انتصابه علی الظرفیتی اس لفظ کے اندر جس کا منصوب ہونا غالب ہو ظرف ہونے کی وجہ سے وہ لفظ جس کا منصوب ہونا غالب ہے ظرف ہونے کی وجہ سے اس میں رفع کے ناپسندیدہ ہونے کے اندر اللہ کا یہ قول بھی اسی کے مثل ہے بھائی معنی سمجھ میں آ گیا پھر یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنا کہ کبھی کبھار یہ مستثنا جو ہے اس کو کلام سے حذف بھی کر لیا جاتا ہے لیکن ہر مقام پر نہیں وہ مستثنا جو الا یا غیرون کے بعد آئے جو الا اور وہ مستثنا جو الا اور غیرون کے بعد آئے اس کو کبھی کبھار حذف بھی کر لیتے ہیں اور لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہر مقام پر نہیں جب اس الا یا غیرون سے پہلے لیسا آ جائے کیا آ جائے لیسا آ جائے تو اس الا یا غیرون کے بعد مستثنا کو حذف کرنا جائز ہے کبھی کبھار کیا کیا جاتا ہے مستثنا کو حذف کر لیتے ہیں کس کے بعد الا اور غیرون کے بعد لیکن اس وقت جب ان سے پہلے لیسا موجود ہو بات سمجھ میں آ گئی مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن لیس الا جاءنی زیدن لیس الا میرے پاس زید آیا یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا صرف زید آیا یا آپ کہتے ہیں جاءنی زیدن لیس غیرو یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا تو دیکھو جاءنی زیدن لیس الا آگے مستثنا محذوف ہے یا جاءنی زیدن لیس غیرو دیکھو غیرو کے بعد مستثنا محذوف ہے اور اصل کلام یوں ہے جاءنی زیدن لیس غیرہ لیس اور یہ غیرہ یہ لیس کی خبر ہے تو تقدیر عبارت کیا ہوگی ذرا یہ اپنے سامنے لکھئے بھائی لکھئے بھائی جاءنی زیدن لیس غیرو جاءنی زیدن لیس غیرو یہ جو غیرو ہے یاد رکھو یہ خبر بنے گا لیس کے لیے یہ خبر بنے گا لیس کے لیے اور لیسا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ ما قبل میں جو فعل آیا اس کے اسم فاعل کی طرف راجع کریں گے ما قبل میں مجیئت والا فعل ہے اور مجیئت سے اسم فاعل کیا آتا ہے جاء یجیئ مجیئا فہوا جائن تو الجائی جو اسے سمجھ میں آ رہا ہے اس کی طرف لیسا کی ضمیر راجع کر دی تو جاءنی زیدن لیس الجائی غیرہو لیس الجائی غیرہو تو یہ غیرہو اصل میں لیسا کی خبر ہے بھائی اور لیسا کے اندر ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی الجائی کو جو ہم نے نکال کر اب لکھ لیا بھائی تو لیسل جائی نہیں ہے آنے والا غیرہو اس زید کے علاوہ, تو پھر اس غیرہو کے ساتھ جو مضافلے تھا حاز امیر اس کو حذف کر لیا, یعنی مستثنا کو کیا کر لیا گیا, حذف کر لیا گیا. اور پھر غیرو یہ تو مضافلے کا تقاضا کر رہا تھا تو پھر اس کو مبنی علی الضم بنا دیا گیا. کیا بنا دیا گیا؟ مبنی علی الضم. جیسے قبلو اور بعدو جب ان کے مضافلے کو حذف کر لیا جائے تو ان کو مبنی علی الضم بنا دیتے ہیں, تو کلام کیا بن گیا؟ جاءنی زیدن لیس غیرو, لیس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو الجائی کو راجع ہے بھائی, جاءنی زیدن لیس غیرو, تو یہ غیرو مبنی علی الضم ہوا اور یہ لیسا کی خبر ہے اور مستثنا محذوف ہے. تو الا اور غیرو کے بعد مستثنا کو کبھی حذف کر دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے لیسا آنا چاہیے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جاءنی زیدن لیسا غیرو, اور آپ چاہیں تو غیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں, غیرہ بھی اس پر پڑھنا جائز ہے. یعنی اصل میں کیا تھا؟ جانی زیدن لیس الجائی غیرہو, تو وہاں را پر زبر تھی تو اس کو اسی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے پڑھنا بھی جائز. جانی زیدن لیس غیرہ, جانی زیدن لیس غیرہ, یوں پڑھنا بھی جائز ہے. تو لیس غیرہ بھی پڑھنا جائز ہے, یعنی غیرہ جو لیس کی خبر ہے اور لیس کی خبر منصوب ہوتی ہے. غیرو کے مضافلے کو حذف کر دیا, مستثنا کو حذف کر دیا تو غیرو کو مبنی علی الفتح بنا دیا. چاہے تو غیرہ اسی حالت پر برقرار رکھیں اور چاہے اس کو مبنی علی الضم بنا دیں, دونوں طرح جائز ہے. جاءنی زیدن لیس غیرو اور جاءنی زیدن لیس غیرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حاصل کیا ہوا کہ الا اور غیرو کے بعد کبھی کبھار مستثنا کو حذف کر لیتے ہیں, اور یہ اس وقت ہوگا جب یہ کس کے بعد آئیں؟ لیسا کے بعد آئیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی, حل ہو گیا. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.